प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। शुक्र गुजारी से मैं घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा।
प्रिय मित्र, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज के बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। मैं उन श्रोता मित्रों को बताना चाहता हूं जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम इन दिनों बाइबल अध्ययन की रूपरेखा देख रहे हैं और पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि बाइबल अध्ययन आरंभ करने से पहले अवश्य ही प्रार्थना करें, अर्थात बाइबल अध्ययन प्रार्थना के साथ आरंभ करें। पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाएं, उससे सहायता मांगें ताकि आप परमेश्वर के वचन को सरलता से समझ सकें और उसके आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, सहायता के बिना पवित्र वचन को समझना कठिन है। इसलिए हमने पिछले कार्यक्रम में देखा कि हमें प्रार्थना के साथ अध्ययन आरंभ करना है और सहायता मांगना है। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना के साथ बाइबल अध्ययन आरंभ करने के बाद क्या करना है। लेकिन इसके पहले कि हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सारे उपकारों के लिए जिसे आपने हम में से प्रत्येक के जीवन में दिया है। आपने हमें प्रतिदिन की रोटी दी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है और सिर रखने के लिए घर दिया है। ये जीवन दिया है, श्वास दिया है, हमें परिवार दिया है, ये सब कुछ आपकी ओर से है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस रेडियो कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम दूर में रहकर भी एक साथ आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आशीषित करें। जो अपने जीवन से दुखी और परेशान है, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। जो बीमार अवस्था में है, उन्हें आप छूकर चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्रों, पिछले अध्ययन के कार्यक्रम में हम प्रार्थना के साथ बाइबल अध्ययन करने के संबंध में देख रहे थे और आज हम उसके अगले भाग को देखेंगे कि प्रार्थना के बाद क्या करना है। तो हमारा अगला विषय है बाइबल पढ़ें, रीड द बाइबल। और यही बाइबल अध्ययन की दूसरी रूपरेखा है। यह दूसरी रूपरेखा अत्यंत सरल दिखाई पड़ती है या लगती है, परंतु कई वर्ष पूर्व किसी ने शेक्सपियर के एक अनुयायी से, जो एक विद्वान था, पूछा, आप शेक्सपियर का अध्ययन कैसे करते हैं? उसका उत्तर बहुत संक्षिप्त था। उसने कहा, मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़िए। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? बाइबल पढ़िए, बार बार पढ़िए। यदि आपको समझ में पहली बार नहीं आया तो उसे दूसरी बार पढ़िए। यदि दूसरी बार भी समझ में नहीं आया तो उसे तीसरी बार पढ़िए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो पढ़ते ही रहिए जब तक कि आप उसे अच्छी तरह से समझ न लें। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन के सत्य को प्राप्त करना है। जब आप इसी प्रकार बाइबल पढ़ते हैं तो आप उन बातों को प्राप्त करते हैं जो एक शिक्षक भी आपको नहीं दे सकता है। इसलिए आपको बाइबल पढ़ना अति आवश्यक है कि बाइबल आपके जीवन के लिए क्या कहती है, और यह सिर्फ आपके लिए ही होगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर के सेवक डॉक्टर जी कैंपबेल मॉर्गन ने कुछ बहुत ही अद्भुत और सहायता प्रदान करने वाली पुस्तकें लिखी हैं जो बाइबल पर आधारित हैं, जिसे हम बाइबल टीका या कमेंट्री कहते हैं। वास्तव में उसके पास पुस्तकों की एक श्रृंखला है जो बाइबल की उन 66 पुस्तकों पर है, और मैं इसे उपयुक्त समझता हूँ। इन पुस्तकों के संबंध में किसी ने इस प्रकार कहा, मैं नहीं जानता कि इससे भी कोई अच्छी पुस्तक है। उसने आगे कहा, जब मैं एक विद्यार्थी था तब इन पुस्तकों का प्रभाव मेरे बाइबल अध्ययन में काफी था। लेखक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वह बाइबल पुस्तक के उस भाग या हिस्से को कम से कम 50 बार नहीं पढ़ लेता तब तक वे कागज पर कलम नहीं चलाते हैं, अर्थात जब तक वे अच्छी तरह से उस पुस्तक को समझ नहीं लेते वे कुछ भी नहीं लिखते हैं। मित्र, अच्छे काम करने के लिए आप मत थकिए, बस आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। यदि आप इसे पहली बार पढ़ने से नहीं समझते हैं तो इसे दूसरी बार अवश्य पढ़िए। जिस प्रकार हमने लेखक के बारे में देखा है ठीक उसी प्रकार तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आप परमेश्वर के वचन की सत्यता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। नहमिया की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 1-3 पद में एक रुचिदायक घटना है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसके प्रभाव का एक सुंदर उदाहरण है। तो आइए हम इस पद को पढ़ें, नहमिया 8 अध्याय उसका 1-3 पद। और जब 7वां महीना आया तो सब इसराइली अपने अपने नगर में थे। तब सब लोग एक मन होकर उस चौक में इकट्ठे हुए जो जल फाटक के सामने है, और उन्होंने एज्रा शास्त्री से मूसा की व्यवस्था की पुस्तक को जो यहोवा ने इसराइल को दी थी लाने को कहा। तब एज्रा याजक 7वें महीने के पहले दिन क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उनकी सभा के सामने व्यवस्था की पुस्तक ले आया, और वह व्यवस्था में से भोर से लेकर दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और सब लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। प्रिय मित्र, यह बाइबल पद बहुत ही विशिष्ट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहूदी लोग 70 साल तक बाबुल देश की गुलामी में थे, और इस कारण से बहुतों ने परमेश्वर के वचन को कभी नहीं सुना था, क्योंकि उन दिनों में वचन की प्रतियों की कमी थी और इसके कारण से अधिक स्थानों में यह वचन उपलब्ध नहीं था। उस समय लगभग 100 अलग अलग प्रकार के अनुवाद उपलब्ध नहीं थे, और न ही कोई नई अनुवाद की हुई पुस्तक छप कर निकल रही थी। इसलिए ऐसा लगता है कि संभवतः 1 या 2 प्रतियां ही अस्तित्व में थी, और एज्रा के पास उन्हीं में से एक प्रति थी। वह जल फाटक के सामने खड़ा हुआ और पढ़ा, जो इस प्रकार था, नहमिया 8 अध्याय उसका 8 पद। और उन्होंने पुस्तक अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था से अर्थ समझाते हुए पढ़ा, जिससे लोग पढ़ी गई बातों को समझ गए। मुझे ऐसा लगता है कि एज्रा ने लेवी गोत्र में से कुछ लोगों को चुनकर उन्हें भीड़ में अलग अलग स्थानों पर खड़ा कर दिया ताकि उसे जवाब मिल सके कि लोग समझ रहे हैं या नहीं। एज्रा परमेश्वर के वचन के कुछ हिस्सों को पढ़ने के बाद रुक जाया करता था और उन लोगों के प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता था जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, और उनके प्रश्नों का उत्तर भीड़ में खड़े किए गए लेवीय परमेश्वर के वचन की व्याख्या दे देकर उन्हें समझाते थे, जिसे हम नहमिया 8 अध्याय उसके 7 पद में पाते हैं। और लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान में खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ वचन को ही नहीं पढ़ा, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन लोगों को समझने में मदद किया, अर्थात उन्हें परमेश्वर का वचन समझा दिया। मित्रों, हमें पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने व पढ़ने से रोकने के लिए बहुत सी वस्तुएं हैं जो ध्यान को भंग करती हैं, और सबसे बड़ा ध्यान भंग जो हमारे पास है वह है कलीसिया। कलीसिया में अनेक समितियों और संस्थाओं और दावतों, मनोरंजन तथा परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी के लिए योजनाएं हैं, लेकिन इसके बारे में कई कलीसियाओं में चर्चा नहीं होती है, अर्थात कलीसिया अनेक कार्यक्रम से घिर गया है। आज कई कलीसियाएं हैं जहां आराधना के समय परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा जाता और न ही उस वचन पर प्रचार व संदेश दिया जाता है। कहने का मतलब है, वचन सीखने व सिखाने के भाग को ही आराधना विधि से हटा दिया गया है, लेकिन इसके बदले में लोगों के लिए एक समय नियुक्त कर दिया जाता है ताकि वे अपने विचारों को रख सकें कि वे क्या सोच रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ भी अधिक कल्पना नहीं कर सकता सिवाय इसके कि समय का बर्बाद करना। यद्यपि यह एक अच्छा बहाना है उन आलसी प्रचारकों व सेवकों के लिए जो वचन प्रचार करने से बचते हैं और वे न बाइबल पढ़ने पर ध्यान देते हैं और न ही उसका अध्ययन करते हैं। मैंने कई बार इस बात पर ध्यान दिया है और पाया कि लोग जो पवित्र वचन से अनभिज्ञ हैं और वचन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं वे कोई और नहीं परंतु कलीसिया के सदस्य हैं। वे लोग परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक बातों को भी नहीं जानते हैं और कुछ कलीसियाओं में वचन को सिखाते वर्षों बीत गए हैं, फिर भी इसकी स्थिति ऐसी ही है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। केवल कुछ विशेष पुस्तकें व पसंदीदा पद ही नहीं परंतु संपूर्ण बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है। यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को जान व समझ सकते हैं, क्योंकि यह विधि परमेश्वर की विधि है। प्रिय मित्र, परमेश्वर के दास आमोस आर वेल्स ने एक कविता लिखी है, जब आप संपूर्ण बाइबल पढ़ते हैं, When you read the Bible through। मुझे लगता था मैं अपनी बाइबल जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, कुछ समझता कहीं चूकता हूँ। अब थोड़ा यूहन्ना से या मत्ती से, अब थोड़ा सा उत्पत्ति से, यशाया के कुछ अध्याय, कुछ भजन संहिता से जैसे भजन 23, रोमियो का 12 अध्याय, नीति वचन पहला। हाँ, मैंने सोचा मैं वचन जानता हूँ, परंतु मैंने पाया कि संपूर्ण बाइबल पढ़ना कुछ अलग ही बात है और वो तरीका भी अपरिचित था। जब मैंने संपूर्ण बाइबल को पढ़ा, आप जो बाइबल को साधारण रूप में लेते हैं, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से पढ़ते हैं, थके हुए शरीर से घुटने टेकते हैं और जल्दबाजी की प्रार्थना में उबासियाँ लेते हैं, आप जो लेखन के सर्वोच्च साहित्य से बादशाह सा व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जो किसी दूसरी पुस्तक से नहीं करते, उसका एक परिच्छेद भी अलग नहीं करते, सिर्फ एक सरसरी व्यग्र दृष्टि, एक योग्य पद्धति की कोशिश, एक विस्तृत और स्थिर दृष्टि की कोशिश करो, आप हर्षोन्माद के साथ घुटने टेकेंगे जब आप संपूर्ण बाइबल पढ़ेंगे। प्रिय मित्र, यह बिल्कुल सच बात है कि जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ही अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे और उतना ही अधिक हम परमेश्वर के वचन से परिचित भी होंगे। एक बार हमारे देश के एक मशहूर कलाकार ने अपने जीवन के परिवर्तन होने के पश्चात इस प्रकार कहा, मित्रों, मैं कला प्रदर्शन के लिए देश विदेश घूमता हूँ, लेकिन यात्रा करते समय मुझे जब भी समय मिलता है मैं अधिक समय बाइबल पढ़ने में बिताता हूँ। एक ही अनुच्छेद को बार बार पढ़ता हूँ ताकि कोई शब्द या वाक्य छूट न जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक वचन को पढ़ूँ और बार बार पढ़ूँ ताकि मैं परमेश्वर के वचन को और अधिक जान सकूँ। जी हाँ मित्रों, जब एक कलाकार अपने जीवन के बदलने के पश्चात प्रभु के वचन से इतना प्रेम कर सकता है तो आप और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आज ही हम सब एक निर्णय लें कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे ताकि हम प्रभु के वचन को और प्रभु को और नज़दीकी से जान सकें। प्रिय मित्र, जैसा हमने देखा है कि हमें बाइबल पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगना चाहिए, इसके बाद बाइबल पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी करना जरूरी है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना ये दोनों ही अलग हैं। पहले बाइबल पढ़ा जाता है और उसके बाद उस पढ़े गए वचन पर अध्ययन किया जाता है, अर्थात समझने की कोशिश की जाती है। इसलिए आप दोनों को एक ही ना समझें। तो आइए हम तीसरी रूपरेखा देखें, बाइबिल का अध्ययन करना। बाइबिल अध्ययन के संबंध में कई साल पहले एक व्यक्ति डॉक्टर जी कैंपेल मॉर्गन के पास आकर उससे कहा, आप ऐसा बोलते हैं जैसे आपको कोई प्रेरणा मिली हो। डॉक्टर मॉर्गन ने उसे उत्तर दिया, प्रेरणा 95% पसीना बहाना है और परिश्रम करना है। पवित्र बाइबल का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें उन बातों की शिक्षा नहीं देगा जिसे हम स्वयं पढ़कर और अध्ययन करके समझ सकते हैं। मैं एक बाइबल प्रशिक्षण केंद्र में बाइबल सीखने आए विद्यार्थियों को पढ़ाता था। वहाँ पर सब प्रकार के लोग थे, लेकिन कुछ दिनों के पढ़ाने के बाद मैंने पाया कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बहुत धर्मनिष्ठ हैं, और मैं समझा कि कक्षा के पश्चात ये लोग अच्छी तरह विषय पर चिंतन करते होंगे। लेकिन सही बात तो यह है कि मैं इन्हें ठीक से नहीं समझ पाया। मैंने पाया कि उनकी धर्मनिष्ठा मात्र एक दिखावा थी, और जो परमेश्वर के वचन की अज्ञानता और खालीपन से ढका हुआ था। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो परीक्षा की पहली रात तक पढ़ाई ही नहीं करते थे, और वे हमेशा बहाना करते कि वे प्रार्थना सभा और अन्य सभाओं को करने में व्यस्त थे। मुझे उनके व्यवहार से ऐसे लगा कि शायद उनमें कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि यदि वे बाइबल को तकिया के नीचे रखकर सो जाएंगे तो उन्हें इसराइल और यहूदा के राजाओं के नाम तकिए के रुई व पंखों के द्वारा से उन तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, विश्वास कीजिए, इस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर का वचन पंख व रुई से होकर हमारे पास या आपके पास कभी नहीं आएगा। हमें परमेश्वर के वचन को समझने व सीखने के लिए घुटना टेक कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। एक बार बाइबल कॉलेज में एक विद्यार्थी ने शिक्षक से कहा, सर, आपने हमें जो अभ्यास करने के लिए दिया है वह बहुत ही नीरस और सूखा है। तब शिक्षक ने बिना एक पल रुके उसे जवाब दिया और कहा, तब तो तुम अपने माथे की पसीने से ही थोड़ा गीला कर दो। मित्रों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि बाइबल का अध्ययन करना अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को समझने के लिए कुछ निश्चित ज्ञान है जो परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं देगा। मैं नहीं समझता कि वह सुस्त और कमजोर लोगों पर कुछ प्रकट करेगा। जबकि आप रेखा गणित या कोई विदेशी भाषा की पुस्तक का एक अध्याय सोने से पहले पढ़कर ही नहीं सीख सकते, तो पवित्र बाइबल को कैसे सीख सकते हैं? प्रिय मित्र, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ शायद आपको सुनकर धक्का लगे। जब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं भक्तिपूर्ण बाइबल पढ़ने को उत्साहित नहीं करता, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है कि वे लोग जो बड़ी ईमानदारी से प्रतिदिन भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ करते हैं, वे बाइबल की सच्चाइयों और भेदों से अनभिज्ञ रहते हैं। एक बार मुझे एक परिवार के साथ ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ, और वह एक अच्छा मसीही परिवार था। प्रतिदिन प्रातःकाल नाश्ते की मेज पर बैठकर वो भक्तिपूर्ण हिस्से को पढ़ते थे, जिसके कारण प्रतिदिन नाश्ता करने में कुछ देरी हो जाती थी, और बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन दौड़ते थे। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें यह भी मालूम नहीं होता होगा कि उन्होंने आज क्या पढ़ा है। बच्चों के पिता अपने कार्य में जाने के लिए जल्दी के कारण बाइबल के कुछ पदों को ही पढ़ते थे। प्रतिदिन के बाइबल पाठन के समय वह कहते कि आज हम इस परिचित बाइबल पाठ को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। और मेरा विश्वास कीजिए कि उस समय अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। और ऐसा होता था कि जब हम बाइबल पाठ समाप्त करते तो दोनों बच्चे वहां से गायब हो जाते, मानो बंदूक से गोली निकली हो। उसी प्रकार उनके पिता भी अपने कार्य के लिए चल पड़ते, सिवाय बच्चों की माता के, जो घर के बर्तनों में उलझ जाती थी। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसने कुछ वचन से सुना भी या नहीं। मित्रों, मैंने उसी दिन वहां पर यह निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार में भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करूंगा। मैंने अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा प्रोत्साहित किया है कि वे अपनी बाइबल पढ़ें जब भी उन्हें समय प्राप्त होता है, जो उनके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी हो सके, अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार बाइबल अध्ययन करें जो जीवन में सचमुच आशीष को लाए। मित्रों, इस बात को ध्यान में रखें कि मात्र दिनचर्या के बाइबल पाठ से हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हमें चाहिए कि बाइबल अध्ययन के लिए अलग से समय निकालें, बाइबल अध्ययन सभाओं में सम्मिलित हों, स्वयं से बाइबल अध्ययन करना सीखें और आप पाएंगे कि आप जीवन में कुछ नई बातें सीख रहे हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। मित्रों, यदि हम अपनी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। आज हम में से कौन है जो परमेश्वर के वचन को सीखना व आशीष पाना नहीं चाहता है? हम सब आशीष पाना चाहते हैं। आइए हम आज के इस अध्ययन को प्रार्थना के साथ और एक निर्णय के साथ समाप्त करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए आपने हमारी सहायता की है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे श्रोता भाई बहनों की सहायता करें ताकि वे आपके वचन को पढ़कर समझ सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन जवान भाई बहनों के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, जो जीवन साथी की तलाश में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें अच्छी नौकरी और जीवन साथी प्रदान करें। हमारे सभी श्रोताओं को आशीष दें। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।